नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के नवादा में चुनावी रैली को संबोधित किया। वे पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में आज दोपहर जनसभा और मध्य प्रदेश के जबलपुर में आज शाम रोड शो करेंगे। निर्वाचन आयोग को चुनाव घोषणा के केवल 20 दिन में सुविधा पोर्टल पर रैलियों, अस्थायी पार्टी कार्यालय खोलने और अन्य कार्यों के लिए 73,000 से अधिक आवेदन मिले। माइक्रोसॉफ्ट ने चेतावनी दी, चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से भारत, अमेरिका और दक्षिण कोरिया में चुनाव बाधित करने की तैयारी में। आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई इंडियंस का सामना दिल्ली कैपिटल्स से और लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। और ऑस्ट्रेलिया तथा भारत के बीच 5 मैचों की हॉकी श्रृंखला का दूसरा मैच पर्थ में अब से कुछ देर में शुरू। दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इंडी गठबंधन के पास स्पष्ट दृष्टिकोण तथा विश्वसनीयता का अभाव है और उनका आपसी मतभेद सबके सामने है। बिहार में नवादा के कुंतीनगर में आज जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्षी गठबंधन के नेता उनकी गारंटी से डरते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष भ्रष्टाचार को बढ़ावा और विकास को बाधित करना चाहता है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने जनता से अब तक किए गए सभी वायदे पूरे किए हैं।
मोदी ने कश्मीर में 370 खत्म करने की गारंटी दी थी। नतीजा क्या हुआ? 370 गई कि नहीं गई? मोदी ने 3 तलाक को खत्म करने की गारंटी दी थी। नतीजा क्या हुआ? 3 तलाक जैसी महिला विरोधी कुप्रथा खत्म हो गई। मोदी ने गारंटी दी थी कि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनेगा। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का शिखर आसमान छू रहा है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और घटक दलों के नेता भी इस अवसर पर उपस्थित थे। एक सप्ताह के दौरान बिहार में प्रधानमंत्री की यह दूसरी चुनावी रैली थी। इससे पहले 4 अप्रैल को उन्होंने जमुई निर्वाचन क्षेत्र से राज्य में एनडीए के चुनाव प्रचार का शुभारंभ किया था। नवादा संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ सीपी ठाकुर के पुत्र विवेक ठाकुर को उम्मीदवार बनाया गया है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को गया, औरंगाबाद और जमुई के साथ नवादा संसदीय सीट के लिए मतदान होगा। श्री मोदी आज दोपहर जलपाईगुड़ी के धूपगुड़ी प्रखंड के झुमुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर अन्य नेताओं के साथ जलपाईगुड़ी के भाजपा उम्मीदवार डॉ जयंत रॉय, अलीपुर द्वार से भाजपा प्रत्याशी मनोज टिग्गा और दार्जिलिंग से उम्मीदवार राजू बिस्ता भी उपस्थित रहेंगे। वर्तमान लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री का पश्चिम बंगाल में यह दूसरा दौरा है। श्री मोदी आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी चुनाव प्रचार करेंगे। वे वहां रोड शो में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री कल शाम महाराष्ट्र में चंद्रपुर का दौरा करेंगे। वे चंद्रपुर और गढ़चिरौली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। राज्य के मोरवा एयरपोर्ट मैदान में आयोजित जनसभा में भारतीय जनता पार्टी और महायुति गठबंधन के नेता शामिल होंगे। चंद्रपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सुधीर मुनगंटीवार और गढ़चिरौली सीट से अशोक नेते पार्टी के उम्मीदवार हैं। प्रधानमंत्री इस महीने की 10 तारीख को रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के कनहन में महायुति गठबंधन के उम्मीदवार राजू परवे के लिए भी चुनाव प्रचार करेंगे। पूर्वी विदर्भ क्षेत्र के 5 निर्वाचन क्षेत्रों नागपुर, राजटेक, हंद्रापुर, गढ़चिरौली चिमुर और भंडारा गोंडिया में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को वोट डाले जायेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि कांग्रेस देश में लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। जयपुर में कल एक रैली में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने शासन के 55 वर्षों में विकास और बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए कार्य किया। श्री खड़गे ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर सभी गारंटी पूरी की जाएंगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं।
लोक निर्णय 2024
आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम
हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर।
चुनावी गतिविधियों की खबर देश के हर अंचल पर नजर,
विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण,
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए
लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024।
ये आकाशवाणी है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा के 20 दिन में ही सुविधा पोर्टल पर 73,000 से अधिक आवेदन मिले हैं। इसके माध्यम से रैलियां आयोजित करने, अस्थायी पार्टी कार्यालय खोलने, घर घर जाकर प्रचार करने और प्रचार सामग्री वितरित करने की अनुमति ली जा सकती है। निर्वाचन आयोग ने कहा कि प्राप्त अनुरोधों में से 44,600 से अधिक स्वीकृत किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
सुविधा पोर्टल चुनाव प्रबंधन में पारदर्शिता को भी बढ़ावा देता है। पोर्टल निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी है जो स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप समान सुविधा उपलब्ध कराता है। लगभग 11,200 अनुरोध नामंजूर किए जा चुके हैं और 10,000 से भी अधिक रद्द किए गए हैं। शेष आवेदन अभी प्रक्रियाधीन है। सबसे अधिक 23,000 अनुरोध तमिलनाडु से, लगभग 12,000 पश्चिम बंगाल से और 10,000 से अधिक मध्य प्रदेश से मिले हैं। राजनीतिक दल और उम्मीदवार चुनाव प्रचार संबंधी अनुमति के लिए इस पोर्टल पर ऑनलाइन अनुरोध कर सकते हैं। सभी हितधारकों को समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए ऑफलाइन आवेदन भी किए जा सकते हैं। समाचार कक्ष से प्राची प्रिया।
निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र सहित 6 राज्यों में चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी धर्मेश एस गंगवार को सामान्य और भूतपूर्व आईपीएस अधिकारी एन के मिश्र को विशेष पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। इन पर्यवेक्षकों को पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में भेजा गया है। मणिपुर की 2 सीटों पर लोकसभा चुनाव 2 चरणों में होगा। मणिपुर आंतरिक संसदीय सीट पर मतदान 19 अप्रैल को कराया जाएगा। मणिपुर आंतरिक सीट पर लगभग 989,887 मतदाता हैं, जिनमें 5,16,150 महिलाएं शामिल हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
चुनाव प्राधिकरण ने घोषणा की है कि मणिपुर में पहले चरण की लोकसभा चुनाव के मतदान 85 विशेष मतदान केंद्रों सहित 1,404 मतदान केंद्रों पर होगा। ये विशेष मतदान केंद्र आंतरिक रूप से विस्थापित मतदाताओं के लिए स्थापित किया गया है। पहले चरण में राज्य के 47 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कराया जाएगा, जिसमें आउटर मणिपुर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 15 विधानसभा क्षेत्र भी शामिल है। इनर मणिपुर लोकसभा सीट के लिए मतदान में उतरे 6 उम्मीदवारों में से भाजपा ने राज्य के शिक्षा मंत्री थौनाउजम बसंत कुमार को मैदान में उतारा है, जबकि जेएनयू के प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकोजम कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। आरपीआई अथावले के राष्ट्रीय महासचिव महेश्वर थौनाउजम और 3 इंडिपेंडेंट उम्मीदवार भी इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए इम्फाल से जे थोकसोम।
राजस्थान में लोकसभा चुनाव की ड्यूटी में लगे कर्मियों को डाक मत पत्रों के जरिए मतदान शुरू हो गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि लोकसभा की ड्यूटी में लगे कुल 3,76,000 अधिकारियों और कर्मचारियों को डाक मत पत्रों के जरिए मतदान की सुविधा दी गई है। सभी जिलों में बने सुविधा केंद्रों पर कल पहले दिन 20,751 कर्मियों ने मत डाले हैं। श्री गुप्ता ने बताया कि प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों और अन्य जिलों में चुनाव कार्य में नियुक्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए डाक मत पत्र से मतदान करने के लिए ये केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर 18 अप्रैल तक प्रथम चरण के लिए जबकि 25 अप्रैल तक दूसरे चरण के लिए लोकसभा क्षेत्रों में मतदान किया जा सकेगा। कांग्रेस ने कल तेलंगाना के थुक्कुगुड़ा में विशाल जनयात्रा से लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की। पार्टी घोषणा पत्र जारी करने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव में किए गए वायदों के प्रति पार्टी की वचनबद्धता व्यक्त की और उन्हें पूरा करने का संकल्प लिया। रोजगार सृजन पर जोर देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार ने 30,000 रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। उन्होंने कामकाजी महिलाओं को वित्तीय सहायता और देश में जाति आधारित जनगणना करवाने का भी वायदा किया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तारी के विरोध में आज एक दिन का सामूहिक उपवास आयोजित किया है। पार्टी नेता संजय सिंह, आतिशी और गोपाल राय ने आज सुबह दिल्ली के जंतर मंतर पर उपवास शुरू किया। संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि इस मामले में सभी प्रमाण और बयान मनगढ़ंत हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता बांसुरी स्वराज ने आरोप लगाया कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार का पर्याय है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। माइक्रोसॉफ्ट ने चेतावनी दी है कि चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए भारत, अमरीका और दक्षिण कोरिया में चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने की तैयारी कर रहा है। चीन द्वारा ताइवान के राष्ट्रपति के चुनाव के दौरान परिणामों को प्रभावित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित ट्रायल रन आयोजित किए जाने के बाद ये चेतावनी आई है। एक रिपोर्ट।
माइक्रोसॉफ्ट ने चेतावनी दी है कि चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए भारत, अमेरिका और दक्षिण कोरिया में चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने की तैयारी कर रहा है। चीन द्वारा ताइवान के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान परिणामों को प्रभावित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित ट्रायल रन आयोजित किए जाने के बाद यह चेतावनी आई है। इस वर्ष यूरोपीय संघ के अलावा विश्व के कम से कम 64 देशों में चुनाव होने हैं। इन देशों में कुल मिलाकर विश्व की लगभग 49% आबादी रहती है। माइक्रोसॉफ्ट की खुफिया टीम के अनुसार चीन समर्थित साइबर ग्रुप उत्तर कोरिया के सहयोग से इस वर्ष कई चुनावों को निशाना बना सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि चीन द्वारा अपने हित में जनमत को बदलने के लिए सोशल मीडिया से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिजित सामग्री प्रसारित किए जाने की आशंका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी के जरिए डीप फेक या मनगढ़ंत घटनाओं सहित निराधार बयान तैयार किए जा सकते हैं। समाचार कक्ष से जया भारती।
स्वास्थ्य के बारे में वैश्विक स्तर पर जागरूकता लाने के लिए आज विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। इसका उद्देश्य आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव झेल रहे विश्व के लगभग 4.5 अरब लोगों को समुचित स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराना है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली की प्रोफेसर डॉ रीमा दादा ने कहा कि जीवन शैली में बदलाव लाकर और योग जैसे अभ्यास अपनाकर अनेक रोगों को दूर किया जा सकता है। जीवन शैली से जुड़े रोग विशेषकर युवाओं में तेजी से फैल रहे हैं।
अधिकतर हेल्थ प्रॉब्लम्स देखी जा रही हैं वो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं जो हमारे खराब जीवन शैली से होती हैं। एक तो गलत खान पान जैसे डाइट है जो एक बहुत इन्फ्लेमेटरी डाइट है जिसमें शुगर सॉल्ट ज्यादा है, ट्रांसफैट्स ज्यादा हैं, बहुत डीप फ्राइड है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, तो इन सब कारण हमारा खान पान बिगड़ गया है। स्मोकिंग, एल्कोहल कंजम्पशन, बहुत मानसिक तनाव। अगर उनको ये जागरूकता दी जाए कि अगर हम ऐसे अपनी जीवन शैली सुधारें तो कई रोग होंगे ही नहीं और इन लोगों को बहुत ज्यादा इससे फायदा होगा।
मुंबई में आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई इंडियंस का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। ये मैच दोपहर बाद 3:30 बजे से शुरू होगा। एक अन्य मुकाबले में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना गुजरात टाइटन्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कल जयपुर में राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से हरा दिया। 184 रन के लक्ष्य के जवाब में राजस्थान ने 19 ओवर और 1 गेंद में 4 विकेट पर 189 रन बनाकर मैच जीत लिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की हॉकी श्रृंखला का दूसरा मैच इस समय पर्थ में हो रहा है। पहले मैच में कल ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 5-1 से हराया था। तीसरा मुकाबला बुधवार को पर्थ में ही होगा। मौसम विभाग ने आज महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कुछ हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन क्षेत्रों में गरज के साथ वर्षा होने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में अगले 6 दिन के दौरान 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बिहार में कल तक यही स्थिति बनी रहेगी। आंध्र प्रदेश में आज, तमिलनाडु, पुदुचेरी और तेलंगाना में कल तथा महाराष्ट्र और केरल में 12 अप्रैल तक वर्षा और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। उत्तराखंड में अगले 6 दिन तक हल्की वर्षा और बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग ने ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में आज ओले पड़ने की संभावना व्यक्त की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के नवादा में चुनावी रैली को संबोधित किया। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में आज दोपहर जनसभा और मध्य प्रदेश के जबलपुर में आज रोड शो करेंगे। निर्वाचन आयोग को चुनाव घोषणा के केवल 20 दिन में सुविधा पोर्टल पर रैलियों, अस्थायी पार्टी कार्यालय खोलने और अन्य कार्यों के लिए 73,000 से अधिक आवेदन मिले। माइक्रोसॉफ्ट ने चेतावनी दी, चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से भारत, अमरीका और दक्षिण कोरिया में चुनाव बाधित करने की तैयारी में। आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई इंडियंस का सामना दिल्ली कैपिटल्स से और लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। और ऑस्ट्रेलिया तथा भारत के बीच 5 मैचों की हॉकी श्रृंखला का दूसरा मैच पर्थ में खेला जा रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।